आज हम एक ऐसी किताब पर विस्तार से बात करने वाली हैं जो अमेरिका में लाखों लोगों के अनदेखे अनसुने जीवन की परतें खोलती है। किताब का नाम है द अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिकन्स।
हाँ, और इसकी लेखिका हैं कार्ला कॉर्नेजो विलाविसेंसियो। और ये किताब इसलिए इतनी खास है क्योंकि ये कार्ला खुद मतलब कई सालों तक अमेरिका में बिना कानूनी दस्तावेजों के रही हैं।
अच्छा,
जी
तो ये सिर्फ कोई बाहरी अध्ययन नहीं है, ये अंदर से निकली हुई आवाज है। शायद पहली बार किसी ने इस अनुभव को जीते हुए फिर हार्वर्ड और येल जैसे संस्थानों तक पहुंचकर फिर उन कहानियों को इतनी ईमानदारी और कह सकते हैं मानवीय संवेदना के साथ दुनिया के सामने रखा है।
और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ आंकड़ों या पॉलिसी की बात नहीं करती, ये उन लोगों के रोजमर्रा के संघर्ष, उनके डर, उनकी उम्मीदें
बिल्कुल,
और उनके सपनों की कहानी है जो अक्सर समाज के हाशिए पर मतलब अदृश्य से रहते हैं।
और ये किताब महत्वपूर्ण भी है। इसे 2020 में अमेरिका के प्रतिष्ठित नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट के तौर पर भी चुना गया था।
बिल्कुल, ये किताब इमिग्रेशन पर जो बनी बनाई धारणा है ना, उनको चुनौती देती है।
सही,
ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि भाई जब हम अप्रवासी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर बनती है और असलियत उससे कितनी अलग हो सकती है। ये उन आवाजों को मंच देती है जो अक्सर राजनीतिक बहसों के शोर में कहीं खो जाते हैं।
और एक बुनियादी सवाल भी उठाती, जैसे आपने शुरू में कहा कि इस तरह छाया में जीने की, अदृश्य होके जीने की मानवीय कीमत क्या है।
एग्जैक्टली, वही मूल सवाल है।
तो चलिए इस किताब और इसकी लेखिका की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। कार्ला कॉर्नेजो विलाविसेंसियो की कहानी, उनके नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि कहानी इक्वाडोर से शुरू होती है।
जी हाँ, कार्ला का जन्म इक्वाडोर में हुआ था और यहीं से उनके जीवन का वो पहला आघात शुरू होता है जिसे वो अपनी किताब में अब एक शब्द इस्तेमाल करती हैं, भूतिया साया या हॉन्टिंग।
भूतिया साया।
हाँ, जब वो सिर्फ 18 महीने की थीं, तो उनके माता पिता बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका चले गए और उन्हें पीछे दादा दादी के पास छोड़ दिया। करीब 5 साल तक वो उनसे दूर रहीं। ये जो अलगाव था, बचपन में माँ बाप से बिछड़ना, उनके लिए एक ऐसा घाव बन गया जो शायद कभी पूरी तरह भरा नहीं। एक साया जो हमेशा उनके साथ रहा।
यानी ये भूतिया साया सिर्फ देश छूटने का नहीं बल्कि उस बचपन के भावनात्मक अलगाव का भी है।
फिर 5 साल की उम्र में वो अमेरिका आ गईं।
हाँ, उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। उनका बचपन क्वींस जैसे इलाके में बीता जहाँ वो हमेशा इस एहसास के साथ जीती थीं कि उनका और उनके परिवार का यहाँ रहना कानूनी तौर पर पक्का नहीं है, अनिश्चित है। और उनके माता पिता, जैसा कि अक्सर होता है, दिन रात मेहनत करते थे। पिता डिलीवरी का काम करते थे, माँ घरों में देखभाल का।
दोनों ही कम तनख्वाह पर, मतलब शरीर तोड़ देने वाली मेहनत करते थे।
तो काला ने ये सब बहुत करीब से देखा होगा, शारीरिक श्रम का बोझ, डर।
बिल्कुल, वो डर कि कभी भी देश निकाला यानी डिपोर्टेशन हो सकता है और समाज में रहते हुए भी जैसे आप अदृश्य हों, उसका मनोवैज्ञानिक दबाव क्या होता है, ये सारे अनुभव उनकी रग रग में बस गए थे।
इन सब मुश्किलों के बावजूद, जैसा हमने सुना, कार्ला पढ़ाई में बहुत तेज थी। उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, वहां से ग्रेजुएट होना, ये तो किसी भी अनडॉक्यूमेंटेड छात्र के लिए एक बहुत बड़ी असाधारण उपलब्धि थी।
यकीनन, लेकिन इसने उन्हें एक अजीब सी स्थिति में भी डाल दिया है ना।
हाँ, कैसे?
उन्हें एक ड्रीमा सफलता की कहानी की तरह पेश किया जाने लगा। ड्रीमर मतलब वो बच्चे जो बिना दस्तावेजों के अमेरिका लाए गए थे।
अच्छा, एक पोस्टर चाइल्ड की तरह।
हाँ, और यही वो छवि थी जिससे वो बाद में नफरत करने लगी, क्योंकि ये आदर्श अप्रवासी वाली कहानी उन लाखों गुमनाम लोगों के संघर्षों को कहीं ना कहीं छिपा देती थी जो शायद हार्वर्ड नहीं पहुंच पाए पर जिनकी मेहनत कम नहीं थी।
ये बात तो है।
फिर हार्वर्ड और उसके बाद ये यूनिवर्सिटी में अमेरिकन स्टडीज में पीएचडी करते हुए उन्होंने सत्ता और व्यवस्था कैसे काम करती है इसे अकादमिक स्तर पर समझा। लेकिन विडंबना देखिए, वो खुद उसी व्यवस्था में फंसी हुई थी। और इसी दौरान उन्हें गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। एंग्जाइटी, डिप्रेशन और जिसे बाद में उन्होंने कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी कहा, ये सब कहीं ना कहीं उनके बचपन के उस भूतिया साए और लगातार बने रहने वाले तनाव का ही नतीजा था।
तो एक तरफ एकेडमिक सफलता थी।
हाँ।
और दूसरी तरफ ये गहरा आंतरिक संघर्ष। फिर उनकी जिंदगी में, जैसा आपने कहा, एक बड़ा मोड़ आया।
हाँ।
2016 के अमेरिकी चुनाव के साथ।
हाँ, वो एक तरह का कैटलिस्ट था। उस समय का जो राजनीतिक माहौल था, अप्रवासी विरोधी बयानबाजी और नीतियां, उसने उन्हें अंदर तक हिला दिया।
जाहिर है,
उन्हें लगा कि अब सिर्फ विश्लेषण करने का वक्त नहीं है, अब जमीनी हकीकत को दर्ज करना होगा। उनके पास उस वक्त डाका नाम की एक अस्थायी कानूनी राहत थी।
हाँ, डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल।
जी, तो उन्होंने फैसला किया कि वो इस मौके का इस्तेमाल देश भर में यात्रा करके दूसरे अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की कहानियों को रिकॉर्ड करने के लिए करेंगे, इससे पहले कि ये राहत भी उनसे छीन ली जाए।
और उनका कहानियां रिकॉर्ड करने का तरीका भी पारंपरिक पत्रकारिता जैसा नहीं था।
नहीं, बिल्कुल अलग। उन्होंने वो जो तटस्थता, ऑब्जेक्टिव पत्रकारिता का आइडिया होता ना, उसे खारिज कर दिया। उनका मानना था कि जब आप अन्याय देख रहे हो तो तटस्थता का दावा करना एक तरह से बेमानी है। वो स्टेटन आइलैंड गई। वहां वो उन दिहाड़ी मजदूरों से मिली जिन्होंने 9/11 हमले के बाद ग्राउंड जीरो पर सफाई का वो खतरनाक काम किया था।
हाँ, मैंने पढ़ा इस बारे में।
उनमें से कई उनके माता पिता की उम्र के थे और अब गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, भुला दिए गए थे। वो म्यामी गईं, देखा कि कैसे स्वास्थ्य बीमा के बिना लोग सेंटेरिया और हर्बल दवाओं जैसी वैकल्पिक चिकित्सा से अपना इलाज करते हैं। फिर फ्लिंट मिशिगन गईं,
जहां पानी का संकट था।
हाँ, और देखा कि कैसे अनडॉक्यूमेंटेड निवासी सबसे ज्यादा असुरक्षित थे। वो मदद मांगने या पानी लेने जाने से भी डरते थे कहीं इमिग्रेशन पुलिस ना पकड़ ले। उनका तरीका था लोगों के साथ वक्त बिताना, भरोसा कायम करना।
ये बहुत जरूरी होता है ऐसी कहानियों में।
और उन्होंने लोगों को उनकी कहानी सुनाने के लिए उनके समय के लिए भुगतान भी किया। वो मानती थीं कि अपनी कहानी कहना भी एक तरह का श्रम है, खासकर जब वो इतनी दर्दनाक हो। ये एक अलग तरह की रिपोर्टिंग थी, सहानुभूति पर आधारित।
और इसी यात्रा और इसी नजरिए का नतीजा है ये किताब द अनडॉक्यूमेंटेड अमेरिकन्स। और इसकी विरासत सिर्फ नेशनल बुक अवार्ड फाइनलिस्ट होने तक ही सीमित नहीं है, जैसा आपने कहा।
नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी विरासत आप देखें तो कई स्तरों पर है। लेखन की दुनिया में उन्होंने एक नई शैली बनाई है जिसमें संस्मरण, पत्रकारिता, सामाजिक आलोचना सब घुल मिल जाते हैं। सांस्कृतिक रूप से इसने इमिग्रेशन पर बहस का रुख बदला है, सिर्फ नीतियों से हटाकर असल मानवीय अनुभवों पर फोकस किया है। वो जो विचार है ना, भूतिया साया या शरीर एक अभिलेखागार के रूप में, ये अब उस बहस का हिस्सा बन गए हैं।
और मानवीय स्तर पर
शायद सबसे अहम, ये उन लाखों लोगों की गरिमा और अस्तित्व का एक स्थायी दस्तावेज है जिन्हें व्यवस्था अक्सर अनदेखा कर देती है, मिटा देना चाहती है। ये किताब कहती है, हम यहां थे, हमने ये सहा, और हम सिर्फ अपने कानूनी दर्जे से परिभाषित नहीं होते।
ये वाकई बहुत शक्तिशाली विचार है। अगर हम कार्ला और उनकी किताब के मूल दर्शन को, उनकी कोर फिलॉसफी को समझने की कोशिश करें तो वो क्या है, क्या चीज उन्हें ड्राइव करती है?
मुझे लगता है उनके काम के केंद्र में कट्टर मानवतावाद है, रेडिकल ह्यूमैनिटिज्म। मतलब हर इंसान को बिना किसी शर्त के, बिना उसके कानूनी दर्जे को देखे, बुनियादी सम्मान और करुणा का हकदार मानना। साथ ही वो चीजों को सरल बनाने के सख्त खिलाफ हैं, जैसे लोगों को अच्छा अप्रवासी या बुरा अप्रवासी जैसी कैटेगरी में बांटना। वो इसका खंडन करती हैं।
सही बात है, जीवन इतना सरल नहीं होता।
बिल्कुल, उनके लिए अनडॉक्यूमेंटेड होना कोई राजनीतिक मुद्दा भर नहीं, बल्कि शरीर और मन पर झेली जाने वाली पीड़ा की एक जीती जागती हकीकत है। और वो दुनिया को मेस्तीसा चेतना के नजरिए से देखती हैं।
मेस्तीसा चेतना, ये क्या है?
ये ग्लोरिया अंजाल्डुआ का कॉन्सेप्ट है, मतलब एक साथ कई दुनियाओं के बीच रहने का अनुभव। जैसे दो संस्कृतियों, दो भाषाओं, या फिर कानूनी और गैर कानूनी स्थिति के बीच की उस दरार में जीना और वहां से दुनिया को समझना।
आपने पहले शरीर एक अभिलेखागार के रूप में कहा था और अभी शरीर पर झेली जाने वाली पीड़ा की बात की। शरीर पर इतना जोर क्यों है उनके लेखन में?
क्योंकि उनके लिए शरीर सिर्फ एक बायोलॉजिकल चीज नहीं है। वो एक टेक्स्ट है, एक किताब है जिस पर अनुभव दर्ज होते हैं। वो बहुत बारीकी से दिखाती हैं कि कैसे अनडॉक्यूमेंटेड अप्रवासियों के शरीर उनके श्रम, उनके आघात और राज्य की उपेक्षा का एक रिकॉर्ड बन जाते हैं।
जैसे
उनके पिता की लगातार दर्द करती पीठ, जो सालों के डिलीवरी के काम का नतीजा है, या 9/11 के सफाई कर्मचारियों के वो कैंसरग्रस्त फेफड़े, या फ्लिंट के लोगों की त्वचा पर जहरीले पानी से पड़ने वाले रैशेज। ये सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, ये उस व्यवस्था की कहानी कहती हैं जिसमें लोग जी रहे हैं। तो बीमारी यहाँ एक तरह का राजनीतिक बयान बन जाती है।
और अमेरिकन ड्रीम, वो मशहूर अमेरिकी सपना जिसके लिए लाखों लोग अमेरिका जाते हैं, उसके बारे में काला का क्या नजरिया है?
वो उसे अनडॉक्यूमेंटेड लोगों के लिए एक क्रूर मजाक समझती है, एक छलावा।
अच्छा,
एक ऐसी गाजर जो उनके सामने लटका दी जाती है ताकि उनके सस्ते श्रम का शोषण होता रहे और वो चुपचाप काम करते रहें। उनका मानना है कि इन लोगों की कहानियों को पूरी ईमानदारी से बताना, बिना किसी लाग लपेट के, कड़वी सच्चाई के साथ, जिसे वो कट्टर ईमानदारी कहती हैं।
रैडिकल ऑनेस्टी।
हाँ, रैडिकल ऑनेस्टी, वही एकमात्र तरीका है उन जिंदगियों को वो जटिलता और सम्मान लौटाने का जिन्हें व्यवस्था ने अक्सर सपाट और अमानवीय बना दिया है।
तो इस किताब को लिखने के पीछे उनकी प्रेरणा सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं थी, कई और पढ़तें भी थीं।
हाँ बिल्कुल, कई पढ़तें थी। पहली, जैसा उन्होंने खुद कहा है, एक कर्ज चुकाना, अपने माता पिता और उनकी पीढ़ी के उन बलिदानों का सम्मान करना। दूसरी, एक जवाबी कहानी, एक काउंटर नैरेटिव घड़ना। मीडिया या सरकार जो कहानी सुना रही है उसका एक अलग जमीनी सच सामने रखना। वो अच्छे अप्रवासी बनाम बुरे अप्रवासी के झूठे विभाजन को तोड़ना चाहती थी।
सही।
और दिखाना चाहती थी कि असल इंसान इन कैटेगरीज से कहीं ज्यादा जटिल होते हैं। और तीसरी, ये उनके लिए शायद खुद के जख्मों को समझने और उनसे जूझने का भी एक तरीका था, दूसरों की कहानियों में अपने ही भूतिया साए, अपने आघातों की परछाइयां देखना।
मुश्किलों का सामना करने का उनका तरीका भी काफी अलग लगता है। वो लचीलेपन या रेजिलियंस की तारीफ करने के बजाय कई बार उसकी आलोचना करते हैं।
हाँ, वो उस भाषा को खारिज करती हैं जब उसका इस्तेमाल दुख और पीड़ा को रोमांटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ये कहना कि देखो, इतनी मुश्किलों के बाद भी ये कितने मजबूत हैं। वो कहती हैं कि ये मजबूती कोई चुनने वाली चीज नहीं, बल्कि एक कड़वी जरूरत है, और हमें ये देखना चाहिए कि इस जरूरत को पूरा करने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है, शरीर पर, मन पर क्या निशान रह जाते हैं।
तो उनका तरीका क्या है?
उनका तरीका है मुश्किलों का सीधे सामना करना बिना लीपा पोथी के, दर्द के साथ बैठना, उसे स्वीकार करना, समाधान देने या उसे ठीक करने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ साक्षी बनना, विटनेसिंग।
सिर्फ गवाह बनना।
हाँ, और वो अपनी मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों के बारे में भी खुलकर बात करती हैं। इसे व्यक्तिगत कमजोरी नहीं मानती, बल्कि लगातार अमानवीय दबाव में रहने का एक स्वाभाविक नतीजा मानती हैं।
ये नजरिया वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर हम कार्ला की यात्रा और इस किताब के बनने की प्रक्रिया को देखें, तो ऐसे कौन से तीन निर्णायक मोड़ या घटनाएं थीं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया?
मेरे ख्याल से तीन मोड़ बहुत अहम थे। पहला तो निश्चित रूप से 2016 का राष्ट्रपति चुनाव ही था।
हाँ, वो तो था ही।
उसने अचानक एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी पैदा कर दी। डेका का भविष्य खतरे में आ गया, अप्रवासी विरोधी माहौल तेज हो गया। इस घटना ने कार्ला को एक अकेडमिक शोधकर्ता या सिर्फ अपनी कहानी लिखने वाली संस्मरणकार से बदलकर एक तरह का, कह सकते हैं, फ्रंटलाइन क्रॉनिकलर बना दिया। जो सीधे उन समुदायों के बीच जा रही थी जो सबसे ज्यादा निशाने पर थे। इसने उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने पर मजबूर किया।
ये तो बाहरी राजनीतिक माहौल का असर था। दूसरा मोड़ कौन सा था जो उनके काम की दिशा तय करने में अहम रहा?
दूसरा मोड़ था ग्राउंड जीरो के सफाई कर्मचारियों से मिलना, जब वो स्टार्टन आइलैंड में उन दिहाड़ी मजदूरों से मिली जिन्होंने 9/11 के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर साइट पर सफाई का वो खतरनाक काम किया था।
हाँ।
वो अनुभव उनके लिए बहुत झकझोरने वाला था। यहीं पर उनका वो विचार पक्का हुआ कि शरीर एक अभिलेखागार है,
जहां आघात दर्ज होते हैं।
बिल्कुल, जहां राजनीतिक और शारीरिक आघात दर्ज होते हैं। उन्होंने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी जो कभी स्वस्थ थे लेकिन अब कैंसर, सांस की बीमारियों, PTSD से जूझ रहे थे और भुला दिए गए थे। इस अनुभव ने न सिर्फ किताब की टोन तय की बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों की कहानी सिर्फ कानूनी कागजात की कहानी नहीं, बल्कि श्रम, शोषण और भरोसे के टूटने की भी कहानी है।
इसने कहानी को एक नई गहराई दी। और तीसरा महत्वपूर्ण मोड़?
तीसरा मोड़ था फ्लिंट, मिशिगन की यात्रा। जब फ्लिंट में पानी का संकट गहराया हुआ था, तब कार्ला ने वहां जाने का फैसला किया। इस यात्रा ने किताब के दायरे को और बड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे सरकारी लापरवाही और जिसे कई लोग पर्यावरणीय नस्लवाद कहते हैं, उसका नतीजा अनडॉक्यूमेंटेड निवासियों को और भी ज्यादा कमजोर बना रहा था।
कैसे?
वो लोग जहरीला पानी पीने को मजबूर थे लेकिन साफ पानी लेने या मदद मांगने से भी डरते थे। अधिकारियों का डर, आईसी का डर।
बाप रे।
ये दिखाता है कि कैसे किसी व्यक्ति की आप्रवासन स्थिति उसे दूसरे व्यवस्थागत अन्यायों जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य की विफलता या पर्यावरण के खतरों के प्रति और भी ज्यादा संवेदनशील बना देती है। इसने कहानी को सिर्फ इमिग्रेशन पॉलिसी से आगे ले जाकर सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण न्याय और मानवीय गरिमा के अधिकार जैसे बड़े सवालों से जोड़ दिया।
ये तीनों मोड़ वाकई दिखाते हैं कि कैसे व्यक्तिगत कहानियां बड़े सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। और ये कहानियां सिर्फ उन लोगों के बारे में नहीं है जिनसे कार्ला मिली, बल्कि ये हम सबको, मतलब इंसान होने के नाते, कुछ जरूरी सबक सिखाती हैं। कुछ मुख्य सबक क्या निकलते हैं इनसे?
पहला और शायद सबसे गहरा सबक यही है कि शरीर हिसाब रखता है। बॉडी कीप्स द स्कोर। आघात, तनाव, डर, कमर तोड़ मेहनत, ये चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहती, ये हमारे शरीर पर अपनी छाप छोड़ती हैं। ये हमें सिखाता है कि किसी की बीमारी या शारीरिक कष्ट को सिर्फ एक मेडिकल समस्या की तरह ना देखें, बल्कि उसे उस व्यक्ति के जीवन के इतिहास, उसके सामाजिक हालात, उसके संघर्षों की कहानी के हिस्से के रूप में समझें।
और सहानुभूति या करुणा को लेकर क्या सबक मिलता है, खासकर जब वो ड्रीमर नैरेटिव की आलोचना करती हैं?
हाँ, दूसरा अहम सबक यही है कि करुणा या सहानुभूति शर्तों पर आधारित नहीं होनी चाहिए, कंडीशनल नहीं होनी चाहिए।
मतलब
जब कार्ला आदर्श, अप्रवासी या ड्रीमर की कहानी पर सवाल उठाती हैं, तो वो हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम किसे दया, सहानुभूति और अधिकारों का हकदार मानते हैं। क्या सिर्फ उसे जो सफल है, असाधारण है, जिसने साबित कर दिया है कि वो इसके लायक है। सबक यह है कि मानवीय गरिमा हर किसी में होती है, उसे कमाया नहीं जाता। हर इंसान, चाहे उसकी कानूनी स्थिति कुछ भी हो, सम्मान और सहानुभूति का हकदार है।
घर की अवधारणा भी इन कहानियों में काफी उलझी हुई नजर आती है।
बिल्कुल।
तीसरा सबक घर की जटिलता है, खासकर प्रवासियों के लिए। घर अक्सर कोई आसान या सुखद जगह नहीं होती। ये वो जगह हो सकती है जिसे छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा।
हाँ।
वो जगह जहां आप कभी पूरी तरह अपना पर महसूस नहीं कर पाते, या वो जगह जिसे आपको यादों, रिश्तों और इच्छा शक्ति से खुद बनाना पड़ता है। ये किताब हमें घर के इस जटिल और अक्सर दर्दनाक मतलब को समझने में मदद करती है।
और एक और बात जो बार बार उभर कर आती है, वो है साक्षी बनने की शक्ति, विटनेसिंग। हाँ, चौथा सबक, साक्षी बनने की शक्ति, पावर ऑफ विटनेसिंग। किसी की कहानी को सुनना, सचमुच सुनना, ध्यान से, बिना किसी फैसले के, बिना उसे ठीक करने या सलाह देने की कोशिश किए, सिर्फ मौजूद रहकर उसके अनुभव का गवाह बनना, ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली और मानवीय काम है। ये उस व्यक्ति के अस्तित्व को मान्यता देता है, उसे बताता है कि उसकी कहानी मायने रखती है। ये उसे अदृश्य या मिटाए जाने के खिलाफ एक प्रतिरोध है।
आज के समय में जब दुनिया भर में माइग्रेशन, सीमाओं पर तनाव और आप्रवासन को लेकर इतनी तीखी बहसें चल रही हैं, ये सबक और ये किताब कितनी प्रासंगिक है?
मेरे हिसाब से आज ये पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। जब हम रोजाना आप्रवासन को लेकर अमानवीय बयानबाजी सुनते हैं, जब लोगों को सिर्फ आंकड़ों या समस्याओं के रूप में देखा जाता है,
हाँ ये तो है,
तब ये किताब एक जरूरी मानवीय हस्तक्षेप करती है। ये हमें याद दिलाती है कि इमिग्रेशन पॉलिसी कोई अमूर्त अकेडमिक बहस नहीं है। ये हमारे लाखों पड़ोसियों, सहकर्मियों और साथी इंसानों की जिंदगी, मौत, स्वास्थ्य और मानसिक शांति से जुड़ा मामला है। ये कट्टर सहानुभूति यानी बिना शर्त वाली गहरी हमदर्दी का एक शक्तिशाली आह्वान है।
ये वाकई एक जरूरी दृष्टिकोण है। तो अगर हमारे श्रोताओं को इस पूरी गहन चर्चा से तीन मुख्य बातें अपने साथ लेकर जानी हो, तो वो क्या होंगी, तीन सबसे अहम निष्कर्ष?
तीन बातें, ठीक है। पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि, इमोशनल इनसाइट। मुझे लगता है वो भूतिया साया, हॉन्टिंग की अवधारणा है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि अनडॉक्यूमेंटेड अनुभव के मूल में बसे स्थायी आघात और नुकसान का वो गहरा एहसास है। पीछे छूटे देश का भूत, बिछड़े हुए बचपन का भूत, डर के साए में खोई हुई पहचान का भूत, ये वो एहसास है जो शायद कानूनी दर्जा मिलने के बाद भी पूरी तरह कभी नहीं जाता। ये छाया में जिए गए जीवन की एक स्थायी भावनात्मक विरासत है।
ये बहुत गहरा है। दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि, इंटेलेक्चुअल इनसाइट। अन्याय के सामने तटस्थता एक मिथक है। कार्ला की किताब और उनका रिपोर्टिंग का तरीका ये दिखाता है कि जब आप इंसानी दुख और अन्याय का सामना कर रहे हों, तो तटस्थता या ऑब्जेक्टिविटी का दावा करना न सिर्फ मुश्किल है, बल्कि शायद अनैतिक भी हो सकता है। उनकी कट्टर ईमानदारी हमें सिखाती है कि सच्चाई के प्रति प्रतिबद्धता कभी कभी व्यक्तिपरक और पक्षधर होने की मांग करती है। ये तटस्थता को खारिज करना पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि सच्चाई को ज्यादा ईमानदारी से सामने लाने का एक तरीका हो सकता है, सच्चाई के प्रति ईमानदार होना। और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, यूनिवर्सल इनसाइट। बीमारी एक जीवनी है, इलनेस इज अ बायोग्राफी। किसी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ उसके जीन्स या लाइफस्टाइल का नतीजा नहीं होता, ये उसके जीवन की कहानी कहता है, उसके श्रम की कहानी, उसके माहौल की कहानी, देखभाल तक उसकी पहुंच की कहानी, और उसके द्वारा सहे गए तनावों और आघातों की कहानी। ये हम सबको अपने और दूसरों के स्वास्थ्य को ज्यादा गहराई, जिज्ञासा और करुणा से देखने के लिए प्रेरित करता है। ये समझने के लिए कि हमारे शरीर हमारी जीवन कहानियों को कैसे सहेज कर रखते हैं। ये तीनों ही बातें सोचने पर मजबूर करती हैं।
क्लोजिंग नरेशन। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकथ्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।